नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम को सुनने के लिए आप सब तैयार हैं। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से एस्तर नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ भी मिल रहा है। तो आइए आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सब इन दिनों बाइबल की पुस्तक में से एस्तेर नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि एस्तेर को दरबार में देख राजा प्रसन्न हुआ। उसे परेशान देख वह समझ गया कि कोई गंभीर बात अवश्य है। आज हम उसे आगे देखेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे जीत और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम दूर में भी रह करके आपके जीत वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से एक साथ कर सकते हैं। इन दिनों जब हम एस्तेर की पुस्तक में से सीख रहे हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि जो कुछ भी आज हम सुनते हैं अपने जीवन में उसे समझ सकें, ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार से चल सकें। तमाम प्रकार की बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से, दुनियावी चिंताओं से, शैतान के छल प्रपंच से आप हम सबकी रक्षा करें। हमारे उन प्रिय भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना है जो बीमार हैं, दुखी हैं, निराश एवं चिंतित हैं, आप उन्हें भी शांति प्रदान करें। हाँ पिता परमेश्वर, इस समय को आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए एस्तेर की पुस्तक 5:4। एस्तेर 5:4 में लिखा हुआ है, एस्तेर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो तो आज हमान को साथ लेकर उस भोज में आए जो मैंने राजा के लिए तैयार किया है। एस्तेर वहां तो अपनी बात नहीं कहती है, परंतु राजा को भोज पर आमंत्रित करती है और हमान को साथ लाने का निवेदन भी करती है। वह चाहती थी कि जब वह राजा को बताए कि हमान ने यहूदियों की ही हानि नहीं परंतु रानी की मृत्यु का भी षड्यंत्र रचा है। एस्तेर का यह कदम निर्भीक नहीं था परंतु साहसी भी था। वह जानती थी कि उसकी जाति का एकमात्र सहारा वही थी। अंततः परमेश्वर ने अपने विधान में उसे रानी बनाया था। मेरे विचार में एस्तेर तो कभी नहीं कहती होगी कि परमेश्वर ने उसे रानी बनाया था या वह परमेश्वर की इच्छा से रानी बनी थी। और सच तो यह है कि वह परमेश्वर का नाम भी नहीं लेती है, यह जानते हुए भी कि उसे मृत्यु दंड मिल सकता है। वह राजा के समक्ष गई, पासा फेंका और वह विजयी हुई। मेरे मित्रों, हम भी एक दिन राजाओं के राजा के समक्ष खड़े होंगे। प्रत्येक विश्वासी उसके सामने खड़ा होगा कि प्रतिफल पाए। यह मसीह के न्याय आसन के समक्ष होगा। एक और न्याय होगा जहां केवल खोए हुए खड़े होंगे। यह श्वेत सिंहासन के समक्ष का दृश्य है। वहां उनके कर्मों का प्रतिफल दिया जाएगा। जी हाँ, जिस प्रकार राजा ने एस्तेर की ओर राजदंड बढ़ाया और उसने आगे आकर उसे छुआ, उसी प्रकार परमेश्वर भी मनुष्यों के सामने अनुग्रह का राजदंड बढ़ाता है और चाहता है कि हम विश्वास में आगे बढ़कर उसे छू लें और वह जो दे रहा है उसे ग्रहण करें। वह हमारी सुंदरता के कारण अनुग्रह प्रदान नहीं करता है। मेरा दर्पण मुझे सुंदर नहीं दिखाता है। मैं तो भीतर से भी कुरूप हूँ। पाप का उद्गम मनुष्य के मन से है। हम प्रदूषण नियंत्रण के विषय में बहुत कुछ सुनते हैं। मैं इसका समर्थन करता हूँ, परंतु मैं वहां से आरंभ करना चाहता हूँ जहाँ सब समस्याओं का उद्गम है, मनुष्य के मन से। परमेश्वर उन सब के सामने राजदंड बढ़ाए हुए है जो उसके पुत्र को प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। एस्तेर की पुस्तक 5:5 उसके 5 में लिखा है, तब राजा ने आज्ञा दी, हामान को तुरंत ले आओ कि एस्तेर का निमंत्रण ग्रहण किया जाए। अतः राजा और हामान एस्तेर के तैयार किए हुए भोज में आए। मित्रों, आप इस पद में राजा की भावनाओं को देख सकते हैं। हामान को तुरंत ले आओ कि एस्तेर का निमंत्रण ग्रहण किया जाए। राजा हामान पर अत्यधिक दयावान था। कि उसे प्रधानमंत्री बनाया और राजाज्ञा पर मुहर लगाने को अपनी अंगूठी भी दे दी। परंतु रानी एस्तेर की तुलना में उसे आज्ञाकारी होना था। वह रानी थी और रानी होने के कारण सौभाग्यवती भी थी। राजा और हामान एस्तेर के भोज में उपस्थित हुए। हम पढ़ते हैं एस्तेर 5:6 में लिखा हुआ है, भोज के समय जब दाख मधु पिया जाता था तब राजा ने एस्तेर से कहा, तेरा क्या निवेदन है? वह पूरा किया जाएगा। तू क्या मांगती है? मांग और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। भोज के समय एस्तेर परेशान दिख रही थी और राजा उसकी मनोदशा को भांप गया था। राजा ने उसके मन की बात पूछी और उसे आधा राज्य देने का वचन भी दिया। इससे प्रकट होता है कि वह जो चाहे उसे मिलेगा। राजा उसे अब भी परेशान देखकर यह खाली चेक उसे दे देता है। जी हाँ, यहाँ हमारे लिए एक शिक्षा है। परमेश्वर ने मसीह यीशु के द्वारा हमें एक खाली चेक दे दिया है। फिलिपियों की पत्री 4:19 में पौलुस लिखता है, मेरा परमेश्वर भी उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। परमेश्वर ने हमें खाली चेक दे दिया है। उसमें धन राशि नहीं लिखी गई है, उसने हस्ताक्षर कर दिए हैं। ऐसा राजा पाना कैसा अद्भुत और सौभाग्य की बात है। वह राजा से बढ़कर हमारा उद्धार करता है। जी हाँ, वह संसार का उद्धार करता है। वह खोए हुए संसार के सामने राजदंड बढ़ा रहा है। यह निर्दयी राजा एस्तेर के प्रति ऐसा अनुग्रहकारी और सहनशील क्यों था? नीति वचन की पुस्तक 21:1 में लिखा है, राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता उधर उसको मोड़ देता है। एस्तेर की कहानी में परमेश्वर राजा के मन को जैसा चाहता है वैसा मोड़ रहा है। एस्तेर 5:7-8 में लिखा है, एस्तेर ने उत्तर दिया, मेरा निवेदन और जो मैं मांगती हूँ वह यह है कि यदि राजा मुझ पर प्रसन्न है और मेरा निवेदन सुनना और जो वरदान मैं मांगू वही देना राजा को स्वीकार हो तो राजा और हमान कल उस भोज में आए जिसे मैं उनके लिए तैयार करूंगी और कल मैं राजा के इस वचन के अनुसार करूंगी। इस विषय में एस्तेर में अब भी मुंह खोलने का साहस नहीं था। अतः उसने कहा, मैंने कल के लिए भी भोज का आयोजन किया है, अतः मैं कल भोज पर आपसे कुछ कहना चाहूंगी। आप एस्तेर में भय स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब राजा और हामान के पास भोजन खाकर चले जाने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। एस्तेर 5:9 में लिखा है, उस दिन हामान आनंदित और मन में प्रसन्न होकर बाहर गया, परंतु जब उसने मोर्दकै को राजभवन के फाटक में देखा कि वह उसके सामने न तो खड़ा हुआ और न हटा, तब वह मोर्दकै के विरुद्ध क्रोध से भर गया। ध्यान दीजिए, भोज के बाद हामान बहुत खुश था कि वही एक ऐसा मनुष्य था जिसे राजा और रानी के साथ भोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसका घमंड और भी अधिक बढ़ गया। उसने रानी पर ऐसा प्रभाव डाला कि उसने कल फिर से उसे भोज पर बुलाया है। उसका यह सोचना नीति वचन 16:18 के अनुसार है जो इसको पुष्टि करता है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। एक और कहावत है जो यूनान में प्रचलित है, जिन्हें देवतागण नष्ट करना चाहे उसे वे पहले पागल बना देते हैं। अब जब हामान वहां से प्रस्थान कर रहा था तब सब लोग उसे दंडवत कर रहे थे, परंतु एक व्यक्ति सीधा खड़ा था, मोर्दकै, जो एक न्यायी था। आप सोचेंगे कि हामान जैसा बड़ा मनुष्य उसके पर ध्यान ही नहीं देता होगा कि उसने दंडवत नहीं किया, परंतु वह इसलिए चुप रहा कि उसके मन में उनके अवश्यंभावी विनाश की कल्पना थी। एस्तेर 5:10-11 में आगे लिखा है, तो भी वह अपने को रोककर अपने घर गया और अपने मित्रों और अपनी स्त्री जेरेश को बुलाया। तब हमान ने उनसे अपने धन का वैभव और अपने बाल बच्चों की बढ़ती और राजा ने उसको कैसे कैसे बढ़ाया और अन्य सब हाकिमों और अपने सब कर्मचारियों से ऊंचा पद दिया था, इन सब का वर्णन किया। जी हाँ, हमान मूर्खता कर रहा था, वह बड़ी बड़ी बातें करना चाहता था। आपने देखा होगा कि मनुष्य जब घमंड करता है तब उसकी बातों के तीन क्षेत्र होते हैं। पहले तो वह अपनी धन संपत्ति की चर्चा करता है, उसका धनोपार्जन के प्रति, और दूसरी बात है वह अपने बच्चों और नाती पोतों की चर्चा करता है, तब वह अपनी पद प्रतिष्ठा की चर्चा करता है। हमान ने इन तीनों क्षेत्रों में घमंड व्यक्त किया है। एस्तेर 5:12 में आगे लिखा हुआ है, हमान ने यह भी कहा, एस्तेर रानी ने भी मुझे छोड़ और किसी को राजा के संग अपने किए हुए भोज में आने न दिया, और कल के लिए भी राजा के संग उसने मुझी को न्योता दिया है। पुरुष के घमंड का एक क्षेत्र और है, स्त्रियों में उसकी ख्याति। आज उसने रानी के साथ भोजन किया और वह कल फिर जाएगा। वह वास्तव में नीच और खलनायक था, परंतु उसे निकट भविष्य का ज्ञान नहीं था। अच्छा होता कि वह रानी से कल फिर न आने की क्षमा मांग लेता, परंतु वह ऐसा नहीं करेगा। एस्तेर 5:13 में लिखा है, तो भी जब जब मुझे वह यहूदी मोर्दकै राजभवन के फाटक में बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, तब तब यह सब मेरी दृष्टि में व्यर्थ लगता है। दूध में एक मक्खी गिर गई है, अर्थात गिर पड़ी है। वह मोर्दकै के अनाचार को सहन नहीं कर पा रहा था। उसका बड़प्पन मोर्दकै के इस व्यवहार के सामने अर्थहीन प्रतीत हो रहा था। किसी ने कहा है कि आप मनुष्य को उसे कुपित करने वाली बातों से आंक सकते हैं। यदि वह छोटी छोटी बातों से कुपित या क्रोधित होता है तो वह एक ओछा मनुष्य है। यदि वह क्रोध का कारण कोई महान विषय है तो वह महान पुरुष है। मेरे मित्रों, आपकी परेशानी का कारण क्या है? क्या आप छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं? यह तो ओछेपन की पहचान है। हम में से अधिकांश स्वीकार करेंगे कि यह हमारे जीवन में सच है। छोटी छोटी लोमड़ियां दाखलता को खराब करती हैं। हमान ने दिखा दिया कि वह एक नीच प्रवृत्ति का मनुष्य था। अंततः मोर्दकै इतने बड़े साम्राज्य में एक छोटा सा न्यायी था। हमान तो उस संपूर्ण साम्राज्य का प्रधानमंत्री था। वह मोर्दकै के व्यवहार को अनदेखा क्यों नहीं करता था? परंतु नहीं, जब जब मुझे वह यहूदी मोर्दकै राजभवन के फाटक पर बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, तब तब यह सब मेरी दृष्टि में व्यर्थ लगता है। एस्तेर 5:14 में लिखा हुआ है, उसकी पत्नी जेरेश और उसके सब मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा बनाया जाए और सवेरे राजा से कहना कि उस पर मोर्दकै लटका दिया जाए, तब राजा के संग आनंद से भोज में जाना। इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसा ही फांसी का एक खंभा बनवाया। ध्यान दीजिए, उसकी पत्नी जेरेश और उसके सब मित्रों ने उससे कहा कि वह मोर्दकै के लिए फांसी का फंदा तैयार करे। अतः उस शाम उन्होंने 75 फुट ऊंचा फांसी का एक खंभा बनाया। आप कल्पना कीजिए, मोर्दकै का अर्थ है छोटा, अर्थात वह नाटा था। एक नाटे पुरुष के लिए इतना ऊंचा फंदा लगाना प्रतिशोध को प्रकट करता है, घृणा और मन का कड़वापन प्रकट करता है। इस सुखद समाधान के साथ हमान सो जाता है। और इसी के साथ अध्याय 5 खत्म होता है, और अब हम अध्याय 6 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे, जिसका विषय है, रात में राजा सो नहीं पा रहा था। आइए पढ़ें, एस्तेर 6:1 उसके 1 में लिखा है, उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। ध्यान दीजिए, राजा को नींद न आना छोटी सी बात है, परंतु परमेश्वर छोटी छोटी बातों द्वारा ही अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है। मेरे विचार में तो राजा को रात में नींद न आना एक आम बात थी। शेक्सपियर ने कहा, ताज पहनने वाला सिर लेटकर विश्राम नहीं पाता है। रात के समय राजा यह भी सोचता होगा कि उसका जीवन संकट में है, परंतु यह विशेष रात जब राजा को नींद नहीं आ रही थी, एक स्मरणीय घटना की रात थी, क्योंकि एस्तेर की पुस्तक में यह रात एक निर्णायक रात थी। जी हाँ, आपने देखा कि परमेश्वर अपने कार्यक्रम में छोटी छोटी बातों ही को काम में लेता है। वर्षों पूर्व परमेश्वर ने एक स्त्री के हृदय को नील नदी में रोते शिशु से मिलाया था और इसके द्वारा उसने एक जाति का भाग्य बदल दिया। संभवतः शूशनगढ़ में यह महत्व की बात नहीं थी कि राजा को नींद नहीं आ रही है। उसने अपने सेवकों से कहा कि वे अरुचिकर इतिहास की पुस्तक पढ़ें। स्पष्ट है कि अरुचिकर कहानी सुनकर नींद आ जाती है। यह राजा के लिए नींद की दवा थी। अब हम परमेश्वर के काम को देखेंगे। एक सेवक को इस काम के लिए बुलाया गया। ये राज्य की घटनाओं का लेखा था। मेरे लिए मसूदे पढ़ना सबसे अधिक उबाने वाली बात है। क्या आपने कभी कोई रुचिकर मसूदा पढ़ा है? यही कारण है कि मैंने अनेक सभाओं की सदस्यता त्याग दी है। अतः राजा ने सोचा कि इतिहास की घटनाओं को सुनने से उसे अच्छी नींद आ जाएगी। उस रात सेवकों ने एक ऐसा अध्याय पढ़ना आरंभ किया जिससे हमें स्पष्ट समझ में आ जाता है कि परमेश्वर का हाथ परिस्थितियों के दस्ताने में होता है। परमेश्वर का काम अलग होता है। अब परमेश्वर काम कर रहा है, वह प्रभुता कर रहा है। एस्तेर का रानी बनना एक संयोग नहीं था। यह भी संयोग नहीं था कि वह राजा की उपस्थिति में गई और राजा ने उसे अनुग्रह दर्शाया। यह भी संयोग नहीं था कि राजा ने उसका निमंत्रण स्वीकार किया। राजा को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उसने इतिहास पढ़वाया और सेवक ने एक भाग निकालकर पढ़ना आरंभ किया। एस्तेर की पुस्तक 6 अध्याय उसके 2 और 3 पद में हम पढ़ते हैं। उसमें यह लिखा हुआ मिला कि जब राजा शायर्स के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से विक्ताना और तेरेश नामक दो जनों ने उस पर हाथ उठाने की युक्ति की थी, उसे मोर्दकै ने प्रकट किया था। तब राजा ने पूछा, इसके बदले मोर्दकै को क्या प्रतिष्ठा और बढ़ाई की गई? राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, उन्होंने उसको उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आप माफिया के बारे में सुनते हैं। ये दो उस युग के माफिया थे। मोर्दकै ने इन दोनों को राजा की हत्या का षड्यंत्र रचते हुए सुना। और फारस के राज्य में ऐसा भी होता था कि लोग चोरी छिपे राजा की हत्या का षड्यंत्र रचते थे और उसके राज्य को हथिया लेते थे। मोर्दकै ने रानी एस्तेर को इसकी सूचना दी और उसने राजा को बताया। यह घटना राज्य के इतिहास में लिखी गई थी। जब सेवक यह विवरण पढ़ रहा था, तब राजा सतर्क होकर उठ बैठा और पूछा, या तो तुमने नहीं पढ़ा या मैंने नहीं सुना। क्या मोर्दकै को इसका प्रतिफल मिला था? सेवक ने फिर ध्यान से पढ़ा और कहा, जी नहीं, उसे कोई भी प्रतिफल नहीं मिला। राजा ने कहा, मेरी जान बचाने वाले को अवश्य ही प्रतिफल मिलना चाहिए। जब राजमहल में यह चर्चा चल ही रही थी कि द्वार पर दस्तखत हुई, तब क्या हुआ देखें। एस्तेर 6 अध्याय उसके 4 से 6 पद में राजा ने पूछा, आंगन में कौन है? उसी समय हमान राजा के भवन से बाहरी आंगन में इस मनसा से आया था कि जो खंभा उसने मोर्दकै के लिए तैयार कराया था, उस पर उसको लटका देने की चर्चा राजा से करे। तब राजा के सेवकों ने उससे कहा, आंगन में तो हमान खड़ा है। राजा ने कहा, उसे भीतर बुलवा लाओ। जब हमान भीतर आया, तब राजा ने उससे पूछा, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो तो उसके लिए क्या करना उचित होगा? हामान ने यह सोचकर कि मुझसे अधिक राजा किसकी प्रतिष्ठा करना चाहता होगा। जब राजा को यह पता चला कि उसकी जान बचाने वाले के लिए अर्थात मोर्दकै को कोई भी प्रतिफल नहीं मिला है, तब हामान का आगमन हुआ। राजा ने पूछा, वह कौन है? वह हामान था। संभवतः वह भी ठीक से नहीं सो पाया था। वह राजा के पास मोर्दकै को फांसी पर चढ़ाने की अनुमति लेने के लिए आया था। फांसी का फंदा तो उसने तैयार कर ही लिया था, अब सिर्फ मोर्दकै को उसमें चढ़ाना था। हामान को राजा की उपस्थिति में कभी भी आने का अधिकार प्राप्त था। हामान के आते ही राजा ने उससे पूछा, वह तो मोर्दकै को फांसी देना चाहता था और राजा मोर्दकै को पुरस्कार देना चाहता था। इन परिस्थितियों से परमेश्वर का विधान प्रकट होता है। परमेश्वर अपनों की चौकसी करता है। यद्यपि ये लोग प्रतिज्ञा के देश से दूर परमेश्वर की इच्छा से बाहर थे, वे उसके मार्गदर्शन से वंचित नहीं थे। जी हाँ, ये विधान की घटनाएं संयोग नहीं थी। ज्यों ही हमान राजा की उपस्थिति में आया, त्यों ही राजा ने उससे एक प्रश्न पूछा। जिस मनुष्य से राजा प्रसन्न हो और उसको प्रतिष्ठित करना चाहता हो तो क्या करना चाहिए? हमान ने सोचा कि राजा उसी के बारे में कह रहा है, क्योंकि वह अंततः एक प्रधानमंत्री था। उसके पास राजा की मुहर की अंगूठी भी थी। उसने चाहे इसके लिए जितना भी पैसा क्यों न दिया हो, उसे यहूदियों के सर्वनाश की अनुमति भी मिल चुकी थी। उसके विचार में उसे छोड़ राजा के पास ऐसा कोई भी अन्य मनुष्य नहीं था जिसे वह सम्मानित करना चाहेगा। परंतु राजा मोर्दकै के बारे में कह रहा था। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि दृश्य बहुत ही गंभीर है। एक ओर परमेश्वर मोर्दकै को इनाम देना चाहता है राजा के द्वारा से, और दूसरी ओर हमान मोर्दकै को नाश करना चाहता है। क्या ही अद्भुत दृश्य है। मेरे मित्रों, कई बार मेरे और आपके जीवन में भी ऐसे ही परिदृश्य आते हैं, लेकिन ऐसे परिस्थिति में भी परमेश्वर मेरे और आपके साथ रहता है, क्योंकि वह चाहता है कि मैं और आप बचाए जाएं। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आप अपने जीवन में अवश्य ही एक नई और उत्तम बातों को सीख रहे हैं। मुझे आशा है कि आने वाले अध्ययन में भी आप अवश्य ही इस कार्यक्रम के आगे के भाग को सुनेंगे और अपने जीवन में आत्मिक आशीषों को प्राप्त करेंगे। तब तक आप प्रभु की संगति में बने रहें और एस्तेर के जीवन पर अवश्य विचार करें। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
पापों को धो दे, कर दे क्षमा, मुझको कर ले कबूल। पापों को धो दे, कर दे क्षमा, मुझको कर ले कबूल। मुआफी मोहब्बत और अब कदमों में तेरे आए मसीहा, मिलता है जीवन जहां।